الحمد لله وكفى وسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. इस क्लास में हम आरिफ़ुल कुरान जिल्द नंबर 5 से सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में इन आयात जो अभी तिलावत की गई का तर्जुमा और खुलासा तफसीर हमने पढ़ के मुकम्मल कर लिया था। अब हम पेज नंबर 53 के ऊपर मारिफ मसाइल वो पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कि मारिफ मसाइल अपनी तहकीक और मुताले की बुनियाद पर यहाँ पर मुरतब किए हैं, तो वो फरमाते हैं कि पिछली आयात में ये बयान आया है कि जिस वक्त अजीज़ मिस्र की बीवी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह में मुब्तला करने की कोशिश में मशगूल थी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इससे बच रहे थे, मगर फितरी और गैर इख्तियारी ख्याल की कश्मकश भी थी, तो हक़ तआला ने अपने बरगुजीदा पैगम्बर की एआनत के लिए बतौर मुजज़ा के कोई ऐसी चीज़ सामने कर दी जिसने दिल से वो गैर इख्तियारी ख्याल भी निकाल डाला, ख्वाह वो चीज़ अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सूरत हो या वहये इलाही की कोई आयत। ठीक है, तो बुरहान जो है वो उसके बारे में मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ एहतमालात बयान किए हैं, लेकिन जो कंक्लूजन था कि भाई जो भी बुरहान था बिल आखिर नतीजा इसका यही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बच गए थे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक सवाल जहन में आता है जो कि आप लोगों से पूछने का इरादा था कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस हम का, ठीक है, हम्मा, राइट, कि उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, इसका जिक्र क्यों किया? ठीक है, इसका जिक्र क्यों किया, इसको छुपाया क्यों नहीं, राइट, क्या जरूरत थी बताने की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी ख्याल आया? वाकया इसके बगैर भी पूरा हो सकता था कि उस औरत ने गंदा काम किया, उस औरत के दिल में बुरा ख्याल आया, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो दौड़ लगाई और वो उससे बच गए। ठीक है ना, ये हम्मत भी ही के बाद हम्मा भी हा की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो जवाब माशाल्लाह पहला तो आई गया कि टू मेक क्लियर दैट ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू कंट्रोल आवर अर्जेस। ठीक है, बिल्कुल बहुत दुरुस्त, और आपने सही जवाब दिया कि एक इसका जो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने पीछे बयान कर भी दिया था, तो ये एक तरह का क्विज भी था कि आपको कितना याद है। तो उन्होंने यही फरमाया था ना कि भाई अगर दिल में इरादा कोई है ही नहीं, उस तरफ माइल होने की कोई अंदर कोई ऐसे जर्म्स हैं ही नहीं, कोई ऐसी पोटेंशियल है ही नहीं, तो व्हाट्स द बिग डील, कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि जी गुनाह नहीं किया? भाई आपके अंदर तो ये यानी हिस ही नहीं है, औरत के लिए हिस ही नहीं है, तो औरत से बच करके आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? ठीक है, तो अल्लाह ताला दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे बंदे जो है ना वो नबियों में भी ये वाली चीज मौजूद है। ठीक है ना, नबियों में भी ये वाली चीज मौजूद है, तो तुम अपने आप को कोई ऐसा मत समझो कि तुम्हें जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो इस एडवांटेज से महरूम करके पैदा किया है, तुम्हारे अंदर ये अर्ज मौजूद है, नबियों में तो ये अर्ज ही मौजूद नहीं थी। ठीक है। नहीं, नबियों में भी अर्ज मौजूद थी, लेकिन उन्होंने जो तकवा वाली जिंदगी इख्तियार करी थी तो उसका अल्लाह ताला ने उनको दुनिया ही के अंदर ही एक फायदा अता फरमा दिया कि उनको बुरहान दिखा दी और फिर वो उन्होंने उसको यानी इलेक्ट कर लिया, उसको उन्होंने प्रेफर कर लिया, उसको उन्होंने चूज कर लिया और वो उस गुनाह के अर्ज से बच गए। ठीक है। और एक और भी इसका जवाब मजीद, यानी इन एडिशन टू दिस, मजीद ये भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, ही लाइक्स टू टेक क्रेडिट, ही लाइक्स टू टेक क्रेडिट। ठीक है ना। ये बात अगर हम तवज्जो से अल्लाह के कलाम को पढ़ें और अल्लाह ताला के कामों को देखें, गौर से देखें, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक को देखें और पूरी दुनिया को अपने अराउंड जब देखें ना, तो ये चीज हमारी निगाहों से ओझल नहीं रह सकती दैट अल्लाह ताला लव्स टू टेक क्रेडिट। ठीक है कि भाई असल में, और लव्स टू टेक क्रेडिट का मतलब सिर्फ ये नहीं, नाउज बिल्ला बुरे अंदाज में नहीं कह रहे कि भाई ये जैसे के होता है ना कि भाई नाउज बिल्ला जैसे के दफ्तर के अंदर, बल्कि यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्यादा मुझे इस पर ख्याल आ रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, सऊदी अरब में भी माशाल्लाह बहुत होता है कि पीएचडी करने के लिए जो है ना वो थीसिस किसी और से लिखवाते हैं, लेकिन जब लिख करके तैयार हो जाता है तो अपना नाम लिख करके फिर उसको सबमिट करवा देते हैं और पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेते हैं। ठीक है ना। मेहनत सारी की सारी किसी और ने करी थी वो थीसिस लिखने के लिए। ठीक है। तो ये आपने क्रेडिट ले लिया ना, नाजायज तरीके से क्रेडिट लिया, क्रेडिट लिया, यू डिड नॉट डिजर्व इट, अनडिजर्विंगली आपने क्रेडिट लिया। ठीक है ना। आपने तो मेहनत करी नहीं थी, आप तो इस काबिल ही नहीं थे कि आपको पीएचडी की डिग्री मिलती, लेकिन आपने क्रेडिट ले लिया। ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। पॉजिटिव, अल्लाह ताला के साथ तो कोई नेगेटिव का तस्वीर ही नहीं हो सकता भाई। अल्लाह ताला हैज ऑल द राइट एंड हैज ऑल द यानी क्या कहते हैं, अल्लाह ताला इज द वन हु डिजर्व्स क्रेडिट। ठीक है। तो फाइल हकीक अल्लाह ताला ही है, ताकि हमारी निगाह से जो है ना ये कॉन्सेप्ट ओझल ना हो जाए कि हम जो है ना वो किसी बंदे के ऊपर या किसी सबब के ऊपर या किसी सलाहियत के ऊपर जो कि मखलूक के अंदर है, हम उसके ऊपर फोकस करके अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने जहन से महव कर दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूल जाए। ठीक है। इस वजह से सब कुछ ही अल्लाह ताला करता है, फाइले हकीकी अल्लाह ताला, अगर ये जिक्र ना भी होता ना फिर भी फाइले हकीकी अल्लाह ताला ही है, अल्लाह ताला ही ने बचाया, अल्लाह ताला ही ने जो कुछ भी किया अल्लाह ताला ही ने किया, लेकिन बंदे अल्लाह ताला ने जो बंदे बनाए हैं तो वो बंदे निस्यान का से मुरक्कब है ना, भूल जाते हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला फिर अपना अपनी इंटरवेंशन कि मैं देखो इंटरवीन करता हूं, मेरा मेरा बीच में अमल दखल को भूल मत जाना, तो इस वजह से अल्लाह ताला ना मेंशन करते हैं इन बातों को। ठीक है। ऐसी हालत में अल्लाह से रुजू करना सिखलाया, माअज़ल्लाह रब इन्नहु रब्बी अहसना मसवाई, रब्बी से अगर अल्लाह ताला का मफहूम ले हम। ठीक है। तो ये यानी इसमें बहुत सारे हमारे लिए सीखने की चीजें हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो अपनी याद जो है वो हमारे हमारे अंदर रखना चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला को किसी भी सिचुएशन के अंदर ना भूलें, ना तो जब हमारे ऊपर ऐसी सिचुएशन पड़े तो ना हम उस वक्त अल्लाह को भूलें कि नहीं जो करना है मैंने ही करना है। ठीक है ना। अल्लाह ने नहीं करना, मैंने ही करना है। और ना हम किसी दूसरे की सिचुएशन देखें तो उसके अंदर अल्लाह ताला को भूलें भूलें कि अच्छा उसने जो क्या क्या जबरदस्त काम किया, नहीं उसने जो किया वो भी अल्लाह ही की तौफीक से किया। ठीक है ना। और इससे फिर एक जो एक नतीजा निकलता है हमारे लिए जो फायदा होता है वो क्या कि भाई जिस तरह उसने अल्लाह की मर्जी से और अल्लाह की मदद से किया तो हमने भी तो अल्लाह की मदद से ही करना है, जैसे कि इस फकीर बेतदबीर ने एक छोटा सा मजमून पिछले दिनों लिखा था। ठीक है। कि इवन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने भी जो कुछ किया वो अल्लाह की मदद के बगैर तो नहीं किया ना, और उन्होंने उनकी बड़ी बात ये थी, उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा नसर अब्दा वहजम अल अहजाब वहदा, मक्का मुकरमा फतह हो गया है, लेकिन ये फतह अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो मक्का मुकरमा फतह नहीं हो सकता था ना, कोई दूसरा होता तो इस बात का तذکرہ ना करता। नबी अलैहिस्सलाम बंदगी के मेराज पर फाइज होने की वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने इसका डंक यानी होता ना डंके पे ऐलान किया कि ये अल्लाह ही ने किया है, सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को दे दिया। ठीक है। तो करना तो अल्लाह ही ने होता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता या हम भूल जाते हैं इस बात को। ठीक है, तो मदद उस फकीर ने उस मजमून में क्या लिखा था कि भाई जब जो 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 बेहतरीन इंसान थे वो अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे, तो भाई हम जो बदतरीन इंसान हैं तो हम कैसे अल्लाह की मदद के बगैर कुछ कर सकते हैं। और जब मदद अल्लाह ही ने करनी है तो फिर हमारे पास वसाइल की कमी हो या हमारे पास सलाहियतों की कमी हो या हमारे पास जो है वो अकल की कमी हो या इल्म की कमी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई। करना तो अल्लाह ही ने है ना, तो मैंने क्या करना है, मैंने तो कार्रवाई डालनी है। हमारे यहाँ कराची में कहते हैं कार्रवाई डालना, ठीक है ना, यानी ऊपर ऊपर से दिखाना कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ये एक 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 तंजिया लफ्ज है, लेकिन असल मकसद कहने का ये है कि भाई जो मुझे हुक्म दिया गया है मैंने तो वो करना है ना, बाकी मैदान तो अल्लाह ने मारना है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, एक मोमिन जिसको अल्लाह का एहसास होता है, अल्लाह ताला को पहचानता है, वो फिर मायूस किसी सूरत में नहीं हो सकता, किसी सूरत में ना अपने इनफरादी जिंदगी में ना अपने खानदानी जिंदगी में मायूस हो सकता कि भाई खानदान में बेहतरी क्यों नहीं आ रही है और घर के हालात क्यों नहीं संवर रहे, ना वो अपनी मुआशी जिंदगी के अंदर मायूस हो सकता है, ना वो अपने इज्तिमाई जिंदगी में मायूस हो सकता है, ना वो उम्मत के लेवल के ऊपर जाके जब बात करता है तो मायूस हो सकता है, क्योंकि करना तो अल्लाह ही ने है भाई। ना पहले कभी किसी ने खुद किया, ना आज कभी कोई खुद कर सकता है, करना तो अल्लाह ही ने है। ठीक है ना, बस ये आगही आ जाना, ये ईमान बन जाना, ये हमारी निजात है, हमारी आखिरत इससे संवर जाएगी। दुनिया सवरे ना सवरे ये अल्लाह का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। दुनिया सवरे ना सवरे हमें तो आखिरत संवारनी है। ठीक है, बाकी आयत मस्कुरा में ये बतलाया गया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस खलवतगाह में इस बुरहान रब्बी का मुशाहिदा करते ही वहां से भाग खड़े हुए और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। अजीज की बीवी उनको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पकड़कर उनको बाहर जाने से रोकना चाहा। वो अजम के मुताबिक ना रुके तो कुर्ता पीछे से फट गया। ठीक है, क्योंकि उनका तो अजम था कि उनको बाहर भाग करके निकलना है, तो वो नहीं रुके तो जाहिर है उसने पीछे से जब खींचने की कोशिश करी तो कुर्ता फट गया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे से बाहर निकल आए और उनके पीछे जुलैखा भी। तारीखी रिवायतों में मजकूर है कि दरवाजे पर कुफल लगा दिया था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़कर दरवाजे पर पहुंचे तो खुद ब खुद यह कुफल खुलकर गिर गया। तारीखी रिवायात का मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात नहीं बताई, लेकिन बनी इसराइल की रिवायात जो पीछे से आ रही थी, यहूदियों की नॉलेज से जो आ रही थी, तो उसके अंदर ये कुफल लगने का भी तذکرہ है। ठीक है, एक और भी बहुत अहम पॉइंट है इसके अंदर के बुरहान। ठीक है, तो ये जो बुरहान अल्लाह ताला ने दिखाया तो ये क्यों दिखाया, इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, बुरहान की क्या जरूरत थी इनको। ठीक है, बुरहान की जरूरत जो थी वो एज अ रिमाइंडर थी। अच्छा, बुरहान में भी एक तो है ना कि भाई आयात, अल्लाह ताला ने आयत लिखी हुई थी छत के ऊपर, आयत लिखी हुई थी, ये बुरहान बन गई, या जो है ये एहसास बुरहान बन गया कि जुलैखा ने तो अपने बुत के ऊपर कपड़ा डाल दिया और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा खुदा जो है वो तो इससे ज्यादा शर्म का मुस्तहिक है कि मैं उससे शर्म करूं। ठीक है, तो ये एहसास भी बुरहान बन सकता था, हो सकता है ये एहसास बुरहान बन गया, या ये कि याकूब अलैहिस्सलाम की तस्वीर दिखा दी। ठीक है ना, एक छवि जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम की, कि वो देख रहे हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो वो देख करके इनको यानी एक रिमाइंडर मिल गया। इल्म इनको पहले से था, पता इनको पहले से था कि ये गलत काम है और ये गुनाह है और इसके ऊपर मुझे सजा मिलेगी, लेकिन तबीयी तौर पर इंसान जो है ना वो इस चीज को भूल जाता है, या शैतान के जो वसवसे होते हैं वो मौके के ऊपर जो है ना वो इंसान के ऊपर गालिब होने आने की कोशिश करते हैं, उसका इल्म उस वक्त मغلوب हो जाता है। ठीक है ना, इल्म तो इनके पास था ना, ये तो अल्लाह के नबी थे ना। ठीक है ना, तो नबी जो होता है वो तो सबसे बड़ा आलिम होता है उस जमाने का, इल्म मौजूद था, लेकिन तबीयी तौर पर वसाविस जो होते हैं ना वो इंसान के दिल में गैर इख्तियारी, जिसको गैर इख्तियारी, पीछे सारी बहस पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो यानी वसाविस इंसान खुद क्रिएट नहीं करता, जो खुद क्रिएट करता है ना वो इख्तियारी चीज होती है, ये तो किसी दूसरे का क्रिएटेड वसवसा है, शैतान दूसरा है ना, गैर है ना हमारा। तो उसने वसवसा डाला, तो इस वजह से ये गैर अख्तियारी कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसी हालत में क्या होता है, रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है इंसान को। ठीक है ना, अब वो रिमाइंडर किसी इंसान की तरफ से भी मिल सकता है, कहीं पे लिखी हुई चीज को पढ़ करके भी वो रिमाइंडर मिल सकता है, या सिर्फ एक जहन के अंदर एक सोच आ जाए, ना कुछ लिखा हुआ पढ़ा, ना किसी इंसान ने आकर के आपसे बात करी, लेकिन जहन में एक सोच अल्लाह की तरफ से आ गई। ये कैसे आती है, इसके लिए अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता बिठाया हुआ है। ठीक है ना, सूरह ये जो मुआवज़तैन है, कुल आउज़ु बिरबिल फलक और कुल आउज़ु बिरबिन नास, उनकी तफसीर के अंदर, मारफुल कुरान के अंदर ही, के इंसान के दिल के एक तरफ एक शैतान और दूसरी तरफ फरिश्ता। ठीक है ना, दाएं तरफ जाहिर है फरिश्ता होगा, बाएं तरफ जो है वो शैतान है। तो वो जो शैतान होता है ना, ये इबलीस नहीं होता, ये इबलीस का खाली एक सबॉर्डिनेट होता है, जो कि हर इंसान का शैतान है, हर इंसान के साथ एक शैतान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने यकीनन सुनी होगी, सहाबा पूछते हैं कि आपके साथ भी एक शैतान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मेरे साथ भी एक शैतान है, लेकिन मेरा शैतान मुसलमान हो गया है। तो शैतान हर इंसान के साथ है, और ये इबलीस ना, इबलीस तो एक ही है। ठीक है, उसकी कोई क्लोन कॉपीज नहीं बनी हुई हर इंसान के पास। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ एक फरिश्ता भी है। ये जो अच्छे ख्याल आते हैं ना, जिसमें दरमियान में कोई, यानी कोई कोई जाहिरी सबब नजर नहीं आ रहा होता, यानी कोई इंसान या कोई लिखी हुई तहरीर, तो फिर वो ख्यालात कैसे आते हैं, वो अल्लाह ताला उस फरिश्ते के वास्ते से इंसान के अंदर डालते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक बुरहान हो सकता है। अब इन्होंने जो इस बुरहान के नतीजे में गुनाह से बचे, ये क्यों बचे, यानी इनकी नीयत क्या थी गुनाह से बचने की, क्या इनकी नीयत ये थी कि अच्छा, जस्ट कंसिडरिंग द बुरहान इन द फॉर्म ऑफ अयूब अलैहिस्सलाम, सॉरी याकूब अलैहिस्सलाम, अब्बा। ठीक है ना, तो ये जो गुनाह से बचे, ये किस वजह से बचे, क्या ये अब्बा को खुश करने की वजह से इस गुनाह से बचे, या रब्बा को खुश करने के लिए गुनाह से बचे। ठीक है ना, रब्बा की खातिर गुनाह से बचे, अब्बा तो रिमाइंडर के तौर पर एक सबब बन गए, अब्बा की तस्वीर का आना। ठीक है ना, अब्बा की तस्वीर सिर्फ एक सबब बन गया, तो ये अब्बा की खुशी की खातिर गुनाह से नहीं बचे थे, ये रब्बा की खुशी की खातिर गुनाह से बचे थे। ठीक है ना, और इसी को तौहीद कहते हैं, और यही असल मकसूद है कि हम जो गुनाह से बचे हैं, तो हम सिर्फ किसी इंसान की खुशनूदी की वजह से गुनाह से ना बचे, अल्लाह की खुशनूदी जो है ना, वो हर सूरत गालिब रहनी चाहिए, हर सूरत गालिब रहनी चाहिए। अगर अल्लाह की खुशनूदी भूल गया इंसान, और किसी मखलूक की खुशनूदी की वजह से वो नेकी भी कर रहा है, या किसी मखलूक की खुशनूदी की वजह से वो गुनाह से बच रहा है, तो ये चीज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, ये चीज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं है। और ऐसी नेकी जो होती है ना, ये इंसान के लिए फिर बाद में जाकर के बड़े नुकसान का सबब बन जाती है, जिस नेकी के अंदर अल्लाह ताला गायब हो, अल्लाह ताला गायब हो। ठीक है, नहीं अब्बा नबी थे तो उनकी शक्ल अल्लाह ही का ख्याल दिलाएगी, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, अल्लाह वाले जो है ना, जिनको देख करके अल्लाह याद आ जाए, हर एक को थोड़ी अल्लाह याद आता, जिसकी नीयत खराब हो जाती है ना, जिसकी प्रेफरेंस जो है वो दुनिया बन जाती है, रियाकारी बन जाती है, वो अल्लाह वाले को देख करके भी अल्लाह को याद नहीं करता, वो अल्लाह वाले को देख करके भी अल्लाह को याद नहीं करता। ठीक है, तो ये कोई इसको एजम्पशन के बुनियाद पर नहीं ले सकते कि अब्बा नबी थे तो उनकी शक्ल अल्लाह ही का ख्याल दिलाएगी, नहीं। ठीक है, तो इस वजह से जो पिछले दिनों बात भी बहुत ज्यादा हुई है कि हजरत जी की खातिर नेकी कर रहे हैं, हजरत जी की खातिर जो है वो गुनाह से बच रहे हैं। ठीक है ना, अल्लाह की तरफ ध्यान ही नहीं है, आखिरत की तरफ ध्यान ही नहीं है, जहां पे अल्लाह ताला ने हिसाब किताब लेना है। आखिरत में तो हजरत जी ने तो हिसाब किताब नहीं लेना है ना, हजरत जी ने तो कब्र के अंदर जाकर के, जो दुनिया ही का हिस्सा है कब्र, उसमें जो है वो आपके शेख साहब ने जाकर के आपका हिसाब नहीं लेना, तो उस वाले जहान के अंदर जाकर के वो आपके शेख साहब जो है वो आपके हिसाब कैसे लेंगे। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया की मोहब्बत इतनी गालिब आ चुकी होती है, इतनी गालिब आ चुकी होती है के बस वही कोई शेख साहब ग्लैमरस हो गए ना ग्लैमरस, वरना तो अनग्लैमरस शेख साहब जो होते हैं उनकी खातिर कोई इस किस्म की हरकतें लोग करते नहीं है, ठीक है। लेकिन जो शेख जरा सा ग्लैमरस बन गए बस फिर वही खुदा बन जाते हैं, बस उन्हीं के लिए नेकी, उन्हीं के लिए गुनाहों से बचना, ठीक है ना। ये चीज अल्लाह ताला को शदीद नापसंद है, शदीद नापसंद है। और ऐसे शख्स का जो है ना, जो ये काम कर रहा होता है ना, ये तो एक आम गुनाहगार से ज्यादा बढ़ के गुनाह कर रहा है, एक आम गुनाहगार से बढ़ के गुनाह कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह वाले की नाकदरी कर रहा होता है, अल्लाह ताला का जो बुरहान था राइट, अल्लाह ताला को याद दिलाने के लिए जो एक खास अल्लाह ताला ने निशानी दी थी, तुमने उसकी भी कदर नहीं करी, तुमने उसके साथ ये वाला धोखे वाला मामला किया है। युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दाउन इल्ला अन्फुसहुम वमा यशउरून, राइट। तुम अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, ईमान वालों को धोने को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यानी हजरत को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो ना, राइट। अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जान को, अपने नफ्स को धोखा दे रहा है, लेकिन उसको इस बात का शऊर नहीं है। कहता क्या है, मैं यकूलू आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौम अल आखिर, ऐसे लोग हैं वो मिन अन्नास मैं यकूलू कि हम तो अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर के आए और हम तो आखिरत के ऊपर ईमान लेकर के आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा हुम बिमुमिनीन, ये नहीं ईमान लेकर के आए हैं, ये तो नेकी भी कर रहा है दुनिया की खातिर, ये तो गुनाह से भी बच रहा है, तो दुनिया के किसी फर्द की खातिर या दुनिया की किसी इज्जत की खातिर या दुनिया के किसी मकाम की खातिर, वमा हुम बिमुमिनीन, ये तो ईमान वालों में शामिल ही नहीं है ये शख्स, ठीक है। इट इज नॉट अ जोक, मतलब कितनी दफा आज ये बात कहता रहता है इंसान में, पता नहीं इसकी कोई इंपॉर्टेंस भी बात नहीं बची होगी। तो यानी ये शदीद गुन, यानी सबसे ज्यादा शदीद गुनाह है, इसी वजह से मुनाफिकीन दर के असफल मिनन्नार है, दर के असफल मिनन्नार, जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे के अंदर, मुशरिकीन से भी ज्यादा निचले दर्जे के अंदर, यहूदियों से भी ज्यादा निचले दर्जे के अंदर कौन होगा, मुनाफिकीन होंगे, ठीक है। हालांकि मस्जिद भी आते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में भी बैठते हैं, और जो है वो जिक्र भी करते हैं, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, जिक्र तो करते हैं ना, किसका जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, लेकिन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे के अंदर होंगे, क्योंकि उनका गुनाह सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह है, ठीक है। तो इस वजह से ना, ये अल्लाह ताला जब नेकी का माहौल देता है ना, तो साथ साथ डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, ज्यादा एहतियात करने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा एहतियात करने की, इवन पहले के मुकाबले में, जब जब जो है ना वो शराब कबाब वाली जिंदगी थी ना, तो उससे भी ज्यादा एहतियात जो है वो मस्जिद की जिंदगी में करने की जरूरत होती है, ठीक है जी। आगे चलें कि जब ये दोनों दरवाजे से बाहर आए तो देखा कि अजीज मिस्र सामने खड़े हैं, उनकी बीवी सहम गई और बात यूं बनाई कि इल्जाम और तोहमत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डालने के लिए कहा कि जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुरे काम का इरादा करे, उसकी सजा इसके सिवा क्या हो सकती है कि उसको कैद में डाला जाए या कोई दूसरी जिस्मानी सख्त सजा दी जाए। तो गैरतमंद था, ठीक है ना, कि किसी ने जो है वो बीवी के ऊपर बुरी निगाह डाल दी, तो बीवी को भी पता था कि मेरा शौहर जो है ना गैरतमंद है, तो इसको तो सजा दिलवानी चाहिए ऐसे शख्स को। वॉट अबाउट दैट पर्सन कि जो कि अपनी बीवी को बेपर्दा लेकर के जो है ना वो पूरी दुनिया में घूमता है और अपने दोस्तों के सामने लेकर के आता है कि देखो कितनी खूबसूरत औरत से मेरी शादी हुई है, राइट। ये हमारे मुआशरे में जो है ना, हम इतना गिर चुके कि इस बात को जो है ना वो अपनी इज्जत का सबब लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि बीवी खूबसूरत है, सारी दुनिया देखेगी तो मेरी तारीफ करेगी, राइट। ये फिल्मों को देख करके यही यही सोच बनती है फिर, ठीक है, फिल्में देख करके और गैरों के काफिरों के नॉवेल्स पढ़ करके, राइट, फासिकों के नॉवेल्स पढ़ करके फिर ऐसी सोच बन जाती है। अच्छे खासा जो है वो बजाहिर ठीक ठाक घराने का फर्द होता है, लेकिन उसकी सोच ये बन जाती है, दयूसियत वाली सोच, ठीक है। तो अजीज मिस्र जो है ना, ये कम से कम दयूस नहीं था और इसकी बीवी को इस बात का पता था, ठीक है। तो इस वजह से उसने ऐसी बात करी, वरना तो बात ही ना करती, ठीक है। तो फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पैगंबराना शराफत की बिना पर गालिबन उसका राज फाश ना फरमाते, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उसका राज फाश ना फरमाते, अल्लाह ताला ने अपने नबी का राज फाश कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हिकमत की वजह से फाश किया, ठीक है, कि सारी दुनिया को पता चले कि मेरे अंबिया जो है ना, ये भी तुम्हारी तरह के इंसान हैं। तुम्हारी तरह के इंसान से मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी तरह गुनाहों में पड़ने वाले इंसान है, लेकिन उनकी कॉम्पोजिशन वही है जैसे तुम्हारी कॉम्पोजिशन है। ठीक है, जैसे तुम्हारी तख्लीक है वैसी उनकी तख्लीक है, मिट्टी से बनाया है मैंने उनको। ठीक है, तो इस वजह से तुम जान लो कि उन्होंने अपने नफ्स के ऊपर मेहनत करी और उसके ऊपर काबू हासिल कर लिया। तुम भी मेहनत करो, तुम भी काबू हासिल कर लोगे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये तो खालिक के दर्जे पर नहीं है, तो मखलूक के दर्जे पर है ना, तो इन्होंने जो है वो एक औरत का राज फाश नहीं करना था। क्यों फाश करते? उसके शौहर के साथ उसका ताल्लुक खराब हो जाता। ठीक है, तो राज फाश ना करते, मगर जब उसने पेश कदमी करके यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत रखने का इशारा किया, तो मजबूर होकर उन्होंने हकीकत का इजहार किया। ठीक है, यानी एक ऐसी चीज जो कि एक आम हालत में नहीं इंसान करता है, शरीफ इंसान नहीं करता है, वो भी जब इस किस्म की सिचुएशन बन जाए ना, कि जबकि अपनी इज्जत को की हिफाजत, अपनी इज्जत दांव पे लग रही हो, तो उस वक्त जो है ना, वो ऐसी नापसंदीदा चीज भी जायज हो जाती है, ऐसी नापसंदीदा चीज। और अपनी इज्जत से यहाँ पर मुराद वो दुनियावी वाली इज्जत नहीं, बल्कि वो इज्जत जो कि दीन से इज्जत आती है। ठीक है, खुसूसन नबी की क्रेडिबिलिटी, नबी के ऊपर झूठ की तोहमत लगाना, क्या मतलब? अगर उसका उसको वो डिफेंड नहीं करेगा कि नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, तो भाई नबी की तो क्रेडिबिलिटी मुतासर हो जाएगी ना। उसी तरह इखलाकियात, अगर नबी के ऊपर कोई बद इखलाकी की तोहमत लगाए, तो इट हैज टू बी डिफेंडेड, इट हैज टू बी यानी काउंटर्ड। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर भी फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ करके ऐसी बात करी जो कि नॉर्मल हालात के अंदर नहीं की जाती है। तो उन्होंने फरमा दिया, ही अराबदतनी अम नफसी, ठीक है ना, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, असल में तो इसने ये कोशिश करी थी। तो अपने तौर पर उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करी। अब इनको तो नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना, और बजाहिर जो है वो इनका ये डिफेंड करना जो है वो किसी फायदा कभी सबब नहीं था, क्योंकि बजाहिर जो है वो एवरीथिंग वॉज गोइंग अगेंस्ट हिम, है ना, यानी उसी का घर था, उसी का शौहर था, और जो है वो यानी आमतौर पे मर्द और औरत के साथ ही मामला होता है कि मर्द ही जो है वो आगे बढ़ रहा होता है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके खिलाफ सारी की सारी चीजें जा रही थी, नतायज बहुत खराब नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, मैंने तो अपना काम यानी अपने आप को डिफेंड कर लिया। तो फिर फरमाते हैं कि मामला अपना मतलब निकालने के लिए मुझे फंसा रही थी, मामला बड़ा नाजुक और अजीज मिस्र के लिए, पोशीदा बंदों को गुनाह से बचा लेते हैं और उनको मासूम महफूज रखते हैं, इसी तरह दुनिया में भी उनको रसवाई से बचाने का इंतजाम मोजजाना अंदाज से फरमा देते हैं। और उमूमन ऐसे मौके पर ऐसे छोटे बच्चों से काम लिया गया है जो आदतन बोलने बात करने के काबिल नहीं होते, यानी हिस्टोरिकली स्पीकिंग जो है वो वॉइस ब्रेकिंग कह रहे हैं। अच्छा, तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग छोटे बच्चों से इस तरह का काम लिया गया है, मगर बतौर मौजजा उनको गोयाई अता फरमाकर अपने मकबूल बंदों की बराअत का इजहार फरमा देते हैं। ठीक है, खुसूसन अंबिया जैसे जो लोग होते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने वही के इंसानों तक पहुंचाने का काम लेना है, तो वो तो पूरा का पूरा एतमाद की बुनियाद पर है। ईमान तो सरासर नबी के ऊपर एतमाद है। किसके ऊपर एतमाद है? अल्लाह पर नहीं, अल्लाह पर एतमाद तो ईमान की सेहत से इसका ताल्लुक है, लेकिन ईमान के नफ्स का ताल्लुक जो है ना, यानी ईमान की जो एक क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस है, वेदर ही हैज ईमान और ही डज नॉट हैव ईमान, ये डिसीजन किस बुनियाद पर लिया जाता है? नबी के ऊपर एतमाद। क्या इसको नबी की बात के ऊपर एतमाद है कि नहीं है? अगर है तो ईमान है, अगर नहीं है तो ईमान नहीं है, जीरो ईमान। ठीक है ना, इसके बाद अगला दर्जा जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है कि भाई नबी ने जो बातें कही हैं, तो उन बातों का कितना जो है वो आपको ख्याल रहता है? ठीक है ना, उनको कितना आप सीरियसली लेते हैं, उनको कितना आप सच्चा समझते हैं? ठीक है ना, आप के पास जब दो राह आता है, तो आप जो है वो नबी की बात के मुताबिक अपनी जिंदगी का फैसला करते हैं, या जो है वो आप दुनिया वालों की बात के मुताबिक अपनी जिंदगी का फैसला करते हैं। ये सब जो है ना, ये सेहत ईमान है। ठीक है ना, कि कितना अच्छा ईमान है आपका, कितना तरोताजा ईमान है आपका, कितना स्ट्रांग ईमान है आपका, ठीक है, कि अल्लाह के वादों के ऊपर आपको कितना है। आपने मान तो लिया कि ये अल्लाह के वादे हैं, नबी ने जो बताया है कि ये अल्लाह का वादा है, आपने इस बात को मान लिया कि हाँ ये अल्लाह का वादा है, इनकार को थोड़ी क्या कि अल्लाह का वादा नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन टाइम के ऊपर, एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर, ठीक है ना, आपने उसको ऐसे यानी उसके साथ ऐसा बर्ताव किया कि जैसा कि आप कह रहे थे कि ये अल्लाह का वादा है, आपका इल्म था कि ये अल्लाह का वादा है, लेकिन आपने बर्ताव भी उसके साथ ऐसा किया कि हाँ ये अल्लाह का वादा है, तो ये ईमान की सेहत होती है। ठीक है, तो सेहत ईमान अलग चीज होती है, नफ्स ईमान अलग चीज होती है। नफ्स ईमान से मुसलमान और काफिर ये फर्क बनता है। ठीक है, नंबर वन इज बिलीफ, नंबर टू इज प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो आपका अमल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन वगैरह। ठीक है, आगे चलें कि इसी तरह दुनिया में भी उनको रसवाई से बचाने का इंतजाम हो जाना चाहिए। अच्छा, ही हो गया, तो जैसे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर, या हारून अलैहिस्सलाम ही लिखे, खैर रज़ियल्लाहु तआला सलामती तो है ना उनके ऊपर भी, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर जब लोग तोहमत बांधने लगे तो सिर्फ एक दिन, और राज कौल के मुताबिक 40 दिन के बच्चे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हक तआला ने गोयाई अता फरमा फरमा कर उनकी जुबान से वालिदा की पाकी जाहिर फरमा दी और कुदरत खुदाबंदी का एक खास मजहर सामने कर दिया। ये ईसा अलैहिस्सलाम भी यानी उन बच्चों में से एक बच्चे थे। बनी इसराइल के एक बुजुर्ग जुरैज पर इसी तरह की एक तोहमत एक बड़ी साजिश के साथ बांधी गई, तो नौजायदा बच्चे ने उनकी बारात के लिए शहादत दी। वो वाकया उम्मीद है कि आपने सबको सब पता होगा कि उनके ऊपर भी इसी तरह की तोहमत लगी थी, तो बच्चे ने फिर गवाही दी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर फिरौन को शुबा पैदा हुआ, तो फिरौन की बीवी के बाल संवारने वाली औरत की छोटी बच्ची को गोयाई अता हुई कि भाई जब मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उसको शुबा हुआ था, तो वो जो गालबन ये वही वाला वाक़ होगा कि इसके सामने जो है वो रख दिया जाए, क्या कहते हैं, एक अंगारा और एक जो है वो यानी सोना रख दिया जाए, और जिस चीज़ के ऊपर ये हाथ डाले तो उसके मुताबिक फैसला किया जाए। तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में फिरौन के हाथ से बचाया। और एक और वाक़ जो कि यहाँ पे हजरत ने जिक्र नहीं किया है, कि जो अस्हाबुल उखदूद वाला वाक़ है ना, उसके अंदर भी एक बच्ची ने, वो गवाही असल में वो गवाही वाला मामला नहीं था, वो बस ये था कि उसकी माँ जो है वो पीछे हट रही थी छलांग मारने से, तो बच्चे ने जो है वो बोल दिया था कि नहीं अम्मी ये तो आगे जन्नत ही जन्नत है, तो उसकी वजह से फिर उसकी माँ ने भी अस्हाबुल उखदूद की लगाई भी जो आग थी उसमें छलांग लगा दी थी। ठीक, इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक एक छोटे बच्चे को हक तआला ने गोयाई अता फरमा दी, और वो भी नहायत आकिलाना और हकीमाना अंदाज की। ये छोटा बच्चा उसी घर में गहवारे के अंदर पड़ा था, ये किसको गुमान हो सकता था कि वो इन हरकतों को देखे और समझेगा और फिर उसको किसी अंदाजे से बयान भी कर देगा, मगर कादर मुतलक अपनी अतात में मुजाहिदा करने वालों की शान जाहिर करने के लिए दुनिया को दिखला देता है कि कायनात का जर्रा जर्रा उसकी खुफिया पुलिस CID है। ठीक है, यानी वो बच्चा जो है वो मौके पर मौजूद नहीं था, उसने देखा नहीं था कुछ भी, उसने ये कोई थोड़ी को, जब उसने बोला तो ये कोई थोड़ी कहा कि मैंने देखा कि औरत जो है वो कसूरवार थी और जो है वो मर्द कसूरवार नहीं था, उसने ये कोई थोड़ी कहा, क्योंकि ही वॉज नॉट देयर। लेकिन अल्लाह ताला ने उससे एक ऐसी बात कहलवा दी, यानी एक 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 उसूल बयान करवा दिया, ठीक है, कि भाई तुम इस उसूल की बुनियाद पर तुम्हारे, जो कि तुम्हारी अकल में को भी लगता है, अकल से सोचो ना कि कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो पीछे से किसी ने फाड़ा है ना, ये तो आगे से भाग रहा था, और अगर आगे से फटा हुआ है तो उसका मतलब यह है कि ये अटैक कर रहा था और औरत ने अपने आप को बचाने के लिए इसके साथ जो है वो लड़ाई करने की कोशिश करी, तो उसका कुर्ता फट गया। ठीक है ना, यानी बिल्कुल अकली बात करी उस बच्चे ने, और इतना छोटा बच्चा पहली बात तो बोल नहीं सकता, दूसरी बात यह कि बोलने को तो चलो किसी को कॉपी करके बोल सकता है, लेकिन इतनी अकल की बात नहीं बोल सकता। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी ये कि कायनात का जर्रा जर्रा उसकी यानी अल्लाह ताला की खुफिया पुलिस CID है, जो मुजरिम को खूब पहचानती और उसके जरायम का रिकॉर्ड रखती है। और जरूरत के वक्त उसका इजहार कर देती है। मैदान हशर में हिसाब किताब के वक्त इंसान अपनी दुनिया की कदीम आदत की बिना पर जब अपने जराइम का इकबाल करने से इनकार करेगा, तो उसी के हाथ पांव और खाल और दरो दीवार को उसके खिलाफ गवाह बनाकर खड़ा कर दिया जाएगा। वो उसकी एक एक हरकत को महशर के अजीम शान मजमे के सामने खोल कर रख देगा। उस वक्त इंसान को पता लगेगा कि हाथ पांव और घर के दरो दीवार और हिफाजती इंतजामात में से कोई भी मेरा नहीं था, कोई भी मेरा नहीं था, मेरा यानी वफादार कोई भी नहीं था। दूसरा तो क्या होता, मेरा अपना जो है वो हाथ, मेरा अपना पैर, मेरा वफादार नहीं था, बल्कि ये सब रब्बुल इज्जत के खुफिया कारिंदे थे। ठीक है, तो ये रिमाइंडर्स हैं हमारे लिए ना। हम सब मानते हैं कि अल्लाह ताला सब जानता है, अल्लाह ताला जो है वो आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला का इल्म जो है वो हर चीज़ के ऊपर मुहित है। हत्ता कि हम कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, हम कुरान मजीद की तफसीरें भी पढ़ना शुरू हो गए हैं, है ना। ये सारी बातें हम सुन रहे होते हैं, जाग मान रहे होते हैं, लेकिन हमें फिर अगर फिर भी कोई खौफ नहीं है, फिर भी हमें कोई एहसास नहीं है कि हम क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला के सामने। ठीक है, तो फिर इसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो यह है कि जी हम इन चीज़ों को बिल्कुल सच नहीं मानते, बिल्कुल सच नहीं मानते, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग आवर नॉलेज, फैक्ट्स एंड फिगर्स, है ना, कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ये वैसे होगा, बस दैट्स इट, है ना। ये इसकी मेरे जिंदगी में इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाली है, तो बस हम फैक्ट्स अपने इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, या ये कि देर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद आवर ब्रेन्स, ठीक है ना, हमारे दिमाग के साथ कोई शदीद किस्म का खलल पैदा हो चुका है कि हम जो है वो यानी बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को अपनी जिंदगी के साथ। ठीक है, जिन चीज़ों को हम कह रहे हैं कि जी ये फैक्ट है और ये ऐसा है और ये सच है वो है, लेकिन हम फिर भी, अच्छा कमजोरी की वजह से बादिर नाख्वास्ता गुनाह हो जाए, ठीक है, और इंसान उसको बुरा समझ रहा हो, ना चाहता हो, तो वो ईमान की कमजोरी कहलाती है कि भाई आपका जो रूह है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है और आपने इतना जिक्र नहीं किया और आपने जो है वो गलतियां आपसे होती रही हैं, तो इस वजह से आप जो है ना वो रूहानी तौर पर कमजोर है, इस वजह से आपसे ये गलती हो जाती है। नहीं, वो मसला नहीं है। ठीक है, मसला तो ये है कि आप सारा जानने के बावजूद आप ये सोचें या ये आप कहें, कुछ नहीं होता। ये जो लफ्ज है ना, कुछ नहीं होता, ये मसला है सारा का सारा। क्योंकि कुछ नहीं होता कि जो लफ्ज है ये इनकार है कुरान का, ये इनकार है कुरान का, ये इनकार है हदीस की, हदीस का। ठीक है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कितने लोग हैं हमारे दरमियान जो कि दुनियादार होने में तो बहुत बोलते हैं ये बात, लेकिन इवन दीनदार होने के बाद भी और इतना इल्म हासिल करने के बाद भी ये कह देते हैं कुछ नहीं होता, अल्लाह का हुक्म तोड़ करके कुछ नहीं होता। ठीक है, तो फिर जो है ना, फिर वो जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन अन्नास मन यकूल आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, तो क्या ये डेफिनेशन उन ऐसे शख्स, चाहे हम हो चाहे कोई भी, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, इस किस्म की बात सोचने से भी, कहना तो दूर की बात, सोचने से भी हिफाजत फरमाए, तो वो वमा हुम बिमुमिनीन के अंदर फिर कौन आएगा। ठीक है, तो यानी खत्म अल्लाहु अला कुलूबहिम में तो फिर वो तो वो है ना जो कि आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी नहीं कहता, वो है उसके लिए अल्लाह ताला का हुक्म है कि खत्म अल्लाह अला कल्बिहिम कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। ठीक है, इन्नल्लज़ीना कफरू, लेकिन जो ये कहता है कि आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन, तो भाई वो तो फिर मुनाफिकीन की डेफिनेशन में आ जाता है ना। तो खुलासा ये है कि ये छोटा बच्चा जो गहवारे में बज़ाहिर इस दुनिया की हर चीज़ से गाफिल व बेखबर पड़ा था, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौजज़े के तौर पर ऐन उस वक्त बोल उठा जबकि अजीज मिस्र इस वाक़े से कशमकश में मुब्तला था। फिर ये बच्चा अगर सिर्फ इतना ही कह देता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बरी हैं, जुलैखा का कसूर है, तो वो भी एक मोजदे की हैसियत से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में बरात की बड़ी शहादत होती। मगर अल्लाह ताला ने इस बच्चे की जुबान पर एक हकीमाना बात कहलवाई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को देखो, अगर वो आगे से फटा है तब तो जुलेखा का कहना सच्चा और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हो सकते हैं, और अगर वो पीछे से फटा है तो इसमें इसके सिवा कोई दूसरा एहतमाल ही नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे और जुलेखा उनको रोकना चाहती थी। ठीक है, यानी अगर वो खाली इतना ही कह देता ना कि यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है, तो ये भी काफी हो जाता। ठीक है, लेकिन हकीमाना बात का कहलवा देना जो है ना, ये भी हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी वजह से ये हकीमाना बात उससे कहलवाई। ठीक है, और शायद इसके अंदर हमारे लिए ये मैसेज हो कि भाई, यानी डोंट एज्यूम कि अगला बंदा जो है ना वो अपनी अकल में कोई बात समझे बगैर ही जो है ना वो तुम्हारे ऊपर इतना एतमाद कर लेगा। ठीक है, बल्कि कोई ऐसी बात भी करो कि जो कि उसके अकल को लगती हो। ठीक है, जैसे कि आजकल फिर वही हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बात हो रही है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ठीक है ना, ऐसी बात करो जो कि सुनने वाले के अकल को लगती हो, समझ में भी आती हो उसके। ठीक है, और हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा करके देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान की अकल को झंझोड़ रहे हैं ना, शुरू से लेकर के आखिर तक। ठीक है, सबसे पहले जो है जब बुलाते हैं सफा पहाड़ी के ऊपर, तो क्या किया, अकल को झंझोड़ा ना कि जब तुम मेरी बात दुनिया के सारे मामलात के अंदर मानते हो और मान रहे हो कि पीछे से अगर कोई लश्कर आएगा तो हम आपकी बात का इनकार नहीं कर सकते, तो तुम मुझे सादिक कहते हो, अमीन कहते हो, कभी तुमने मुझे झूठ बोलते हुए नहीं देखा, तो फिर तुम आखिरत के बारे में मुझे कैसे झुठला सकते हो? व्हाट इज दिस? दिस इज लॉजिकल इन्फ्रेंस। ठीक है, तो लॉजिक देनी पड़ती है ना, तो बच्चे ने भी लॉजिक दी है। ठीक है, ये नहीं कि बस बस मैं जो कह रहा हूं बस मान लो। ठीक है, हाँ ये बात समझा सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारी अकल अभी इस लेवल की नहीं है कि वो बात तुम्हारी समझ में आ सके, उसके लिए भी लॉजिक देना। ठीक है ना, उसके लिए भी लॉजिक दे सकते हैं ना कि भाई जैसे कि आप देखते हैं कि भाई साइंस की जो जो तालीम होती है, तो जो फर्स्ट ग्रेड का बच्चा होता है या इवन फर्स्ट ग्रेड का कोई एडल्ट भी हो, है ना, एडल्ट एजुकेशन, पहली दफा साइंस पढ़ रहा है, तो क्योंकि उसकी उम्र जो है वो 40 साल है और पहली दफा साइंस पढ़ रहा है, तो क्या आप उसको यानी बैचलर्स लेवल की साइंस से शुरू करते हैं? क्योंकि भाई ये तो 40 साल का हो चुका है। नहीं, उसको भी तो आपने प्राइमरी लेवल की साइंस से शुरू करना है ना, उसकी इस्तेदाद बनाएंगे, फिर उसको जो है वो बातें समझ में आएंगी, बेस बिल्ड होगी, फिर जाकर के उसको एडवांस साइंस पढ़ाएंगे। तो लॉजिकल यानी आप दलील दे रहे हैं ना बात समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन बिल्कुल नहीं, बस मैं कह रहा हूं ना, बस कह दिया सो कह दिया, दफा हो जाओ यहां से, ये नहीं चलता। ठीक है, ये चलता नहीं है, बल्कि ये बड़ी तेजी से गिरता है और फिर वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ जाते हैं थोड़ी देर के बाद कि अगले बंदे ने फिर उसके बाद क्या आपके खिलाफ एक महाज बनाया हुआ है अपने जहन के अंदर। ठीक है, बीवी के साथ भी ये नहीं चलता और ये बच्चों के साथ भी नहीं चलता, किसी के साथ नहीं चलता। आगे चले, शायद ये एक ऐसी बात थी कि बच्चे की गोयाई के एजाज के अलावा खुद भी हर एक की समझ में आ सकती थी, और जब बतलाई हुई अलामत के मुताबिक कुर्ते का पीछे शक होना मुशाहिदा किया गया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराअत जाहिरी अलामात से भी जाहिर हो गई। ठीक है, ये बात बस थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें, इस फकीर को बार बार रिपीट करता रहता हूं कि भाई ये जो दीन की तबलीग है ना, ठीक है ना, ये है एक सेल्स का काम। ठीक है ना, यू आर सेलिंग ए प्रोडक्ट, ये है एक सेल्स की जॉब, तबलीग, दावत। ठीक है ना, आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप एक सोल्यूशन सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जिंदगी गुजारने वाले एक मुआशरे को आप कैसे अपनी प्रोडक्ट और अपनी जो है वो सोल्यूशन सेल करेंगे? उसका तो गुजारा चल रहा है। यू हैव टू सेल इट, यू हैव टू मेक यू नो स्पेस फॉर योर प्रोडक्ट एंड योर सोल्यूशन इन दैट सोसाइटी। तो उसके लिए आपको कोई एफर्ट करनी पड़ेगी ना, पहले तो अपनी प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट को समझे बगैर कोई सेल्समैन जो है वो सेलिंग कर सकता है? सोल्यूशन को समझे बगैर कोई सेल्समैन सेलिंग कर सकता है? हमारे पास अपने दीन की क्या समझ है, क्या समझ है हमारे पास अपने दीन की जो कि हम उसको सेल भी कर सकें? आएं बाएं शाएं करते हैं खाली, हम है ना, वही फिर वही होता है कि बस मैं कह रहा हूं मान लो, बस खत्म बात, कुछ आगे पीछे करने क्यों? इसलिए कि आपको कुछ पता ही नहीं, आपको समझाया नहीं नहीं आता, आपको जो है वो लॉजिकल दलील भी नहीं आती और आपको जो है वो नकली दलील भी नहीं आती, अकली दलील भी नहीं, नकली दलील भी नहीं, बस ऐसे ही गुस्सा आता है बस, आपको और कुछ नहीं आता।
ठीक है,
तो
सेलिंग को जरा हमें सीखना पड़ेगा ना, और दीन के साथ जो है ना, ये जो हम यानी दीनदार बनने के बाद जो हम जुल्म कर रहे होते हैं ना, दीन के ऊपर क्या खाक जुल्म करेंगे, हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना। खुद तो समझ करके सारी बातों को एक्सेप्ट किया है, लंबा टाइम लगाया है चीजों को समझने में, फिर जाकर के जो है उनको एक्सेप्ट किया है, फिर जाकर के जो है वो कुछ करने यानी करने का इरादा किया, अपनी जिंदगी को थोड़ा तब्दील किया, लेकिन अगले बंदे से क्या, बस डंप करना है ना, डंप कर दिया, ये करो तुम, ये मत करो तुम, राइट। और जो है वो हजरत से बैत कर लो तुम, भाई यू हैव टू सेल हजरत, यू नो यू हैव टू शो वैल्यू, और शो वैल्यू के लिए झूठ बोलने की इजाजत नहीं है भाई। आपने कोई वैल्यू थी, आपने कोई वैल्यू देखी थी तब आप जुड़े हैं ना, व्हाई कैंट यू शेयर दैट वैल्यू विद दैट पर्सन हुम यू वांट टू इनवाइट, ये आप क्यों नहीं वैल्यू शेयर कर सकते अगले बंदे से। इतनी अकल लगाने के लिए हम तैयार नहीं किसी के लिए, इसको कहते हैं खुद गर्जी। अदीन और नसीहा जो है ना, बिल्कुल गोया के है ही नहीं अदीन और नसीहा, क्योंकि अगर आपको खैरख्वाही होती, अगर आपको अगले बंदे की वाकई फिक्र होती, तो जो वैल्यू आपके पास मौजूद है, कम से कम उस वैल्यू को आप प्रेजेंटेबल बना करके उसके सामने पेश तो करते ना। अपना उल्लू सीधा कर लिया, राइट, खुद दीनदार बन गए, अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपना काम निकाल लिया, अपने बच्चों के लिए माहौल बना लिया, अगले बंदे के लिए जो है ना बस डिमांड है कि तुम भी बन जाओ सब कुछ, तुम भी कर लो सब कुछ, समझाना नहीं है अगले बंदे को, खुद गर्जी है ये, और ये खैर ख्वाही की नफी है, ठीक है। तो हमें अदीनों यानी इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो कि अपने लिए होता है, नियत इंसान की अपनी होती है, और फिर उसके बाद अदीनु नसीहा, ठीक है, इन दोनों की शदीद जरूरत है। अल्लाह ताला बात की समझ, अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।